Assalamualaikum everybody. This is Bakhabar episode 9. No episode tak hum log pahunch chuke hain. Pitch and thank you for staying with us, for enjoying our content, for giving us this feedback. As usual, I have Fez with me from Macro Pakistani. Humne episode 8 mein jo baat ki thi, wo baat ki thi berozgari ki. Aur usse jo pichle do episodes hain, wo humne dedicate kiye the mehngai ke upar. Kyunki wo bahut important ek topic tha, jisme bahut kuch tha jo uncover kiya ja sakta. अब जब हम महंगाई की बात करते हैं तब आप बात करते हैं कि एवरेज पाकिस्तानी जो है वो कंज्यूम क्या करता है, उसमें यूटिलिटीज थी और बहुत सारी चीजों के साथ एक जो चीज है जिसपे काफी खर्चा होता है, जिससे हर इंसान बेजार भी है, जो न्यूज में हर दो हफ्ते में पॉप अप होता है, वो है बिजली और बिजली की कीमतें. और द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिसिटी इज स्टिल अ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. बंदा दुकान कैसे चलाएगा, बंदा बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स है, देयर आर सोशल इम्प्लिकेशंस of struggling, still struggling with electricity. And even though I'm an old man, meri jawani se to mujhe jab tak yaad hai, I've seen Pakistan, especially in Karachi, mostly in darkness. To the fact ki abhi main Hyderabad mein hoon, and 3 hours ago, my parents got a notification from HESCO ki kal se subah 7 baje se 12 baje tak bijli aapke paas nahi hogi. Soche agar aap apna din shuru kar rahe hain darkness mein 5 ghante ke liye, to aapka din aage ka kaisa guzrega? And this is very, the downpounding thing about this entire thing is ki acha 3 saal pehle tak to ye chalo baat samajh mein aati bhi thi when we had a deficit, but aaj contrary to popular belief Pakistan generates or has an excess supply of electricity which is absolutely astounding. To Pakistan ka abhi agar hum bijli ki picture khenche uski distribution ki uski generation ki, to aaj kya halaat hain, kaisa dikhta hai Pakistan is bijli ki surat hal mein, aaj hum janenge. We again have Fez with us. Fez, please tell us about what Pakistan looks like in the landscape of electricity.
Thanks Anil. HESCO ki aapne waise baat karke, I don't know if a lot of people will be sad after that, kyunki maine at least number dekhe hain, HESCO itna acha nahi karta perform, so I feel your pain. Main bhi abhi Karachi mein baitha hua aur ke electric I think has improved a bit. Still has a way to go in terms of improvement. Lekin chale, let's step back and think about ke Pakistan ki journey kya rahi hai. Theek hai, aapne Karachi ke mention kara ke used to be in darkness. Lekin let's think about ke electricity generation ki agar planning kar rahe hote hum. Theek hai, hum aur aap baithe hote hum plan kaise karte. Theek hai, ek to hai aapko pure saal ki demand pata ho ke consume electricity kitni hogi aur utni electricity produce kare. उससे ज्यादा इस ना करें उसके भी थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उतनी तो प्रोड्यूस करें. ठीक है, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि पाकिस्तान के वेदर के हिसाब से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर डे बहुत वेरी करती है. ठीक है, समर्स का अगर आप टाइम देखेंगे तो हमारी पीक डिमांड जुलाई से सेप्टेम्बर के बीच में आती है, और पिछले साल इन 2020 ये कोई 26,000 मेगावाट थी NTDC की, which is separate from K Electric, kyunki wo K Electric ek separate entity hai. K Electric ki apni koi I think 3600 ke kareeb peak demand thi. To ab ye peak demand ke hisab se aap planning karte hain ki ek din aayega pure saal mein ki aapko itni zyada bijli chahiye hogi, to aapko itni capacity to rakhni hi padegi per day produce karne ki aur transmit karne ki. Theek hai, sabse pehle to aapko that's what you need to keep in mind. To winter month mein for example agar 12000 megawatt डिमांड है, आप अपनी जनरेशन कैपेसिटी 12000 नहीं रख सकते, आपको एक्सेस कैपेसिटी बनानी ही पड़ेगी टू बी एबल टू कैटर टू द रेस्ट ऑफ द ईयर. ठीक है, ये सबसे पहली चीज एक समझने की है. सो अब मैंने जो पीक डिमांड्स की बात करी है और आपने बोला अभी सरप्लस में है, के इलेक्ट्रिक अभी भी डेफिसिट में है. सो कराची वालों की अगर लोड शेडिंग होती है थोड़ी सी, यू कैन स्टिल एक्सप्लेन दैट, क्योंकि 400 को कोई डेफिसिट है, कोई 3200 उनकी जनरेशन केपेबिलिटी है, तभी आपने अगर अखबारों में देखा हो कि वो उनको NTDC से इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी पड़ रही है, राइट, वो उनकी एक्सेस डिमांड पूरी करने के लिए. तो वो एक चीज हो गई, NTDC की अपनी जो है जनरेशन केपेबिलिटी कोई 28,000 है, सो देर 1500 के लगभग उनकी कोई एक्सेस सप्लाई है अभी एज ऑफ 2020 की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, बट इसको अगर मैं पीछे ले जाऊं 2017 तक फॉर एग्जांपल, हमारा जो डेफिसिट था ना NTDC का कोई 6000 मेगावाट था. ठीक है, मैंने अपनी अंडरग्रेड एजुकेशन जो थी वो लम्स में की थी, लाहौर में, और हमें पता था लाहौर में क्या हो रहा है, एक घंटा आ रही है, एक घंटा जा रही है, एक घंटा जा रही है, दैट्स was the reality back in 20, let's say the 2010s, ke hamari deficit bahut zyada tha. Ab masla kya hona hai, is ke Pakistanis will suffer from too much electricity. 6,000 ka deficit rata of electricity in 2017, by 2026, jab hamara maximum deficit hoga, wo koi 6,000 ke lagbag, surplus hoga, wo 6,000 surplus hoga hamara. To hamare paas 6,000 megawatt excess generation capacity ek din ki padi hui hogi, which you will have to end up paying for. Lekin iski hum thodi der mein baad mein baat karte hain.
So just so that people understand a little bit, even a high level understanding of ki jo energy ka supply chain hai, value chain hai, uske upar agar, so things like NTDC, things like GenCos, things like DISCOs, agar aap bahut briefly samjha sakein, so that people can follow through you even better.
ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी का मैप समझना जो ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बट लेट्स ट्राई टू गिव इट अ शॉट. तो एनटीडीसी है आपकी नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी. ठीक है, वो जो ट्रांसमिशन का की जॉब होती है वो सर्व करते हैं. नेप्रा आपका रेगुलेटर है, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी. जेनको आपने बोला वो होती है जनरेशन कंपनीज. तो पीएसओ से बेसिकली कोई पाकिस्तान स्टेट ऑल से कोई फ्यूल लेगा, सम आईपीपी हो सकती है या गवर्नमेंट की कोई हो सकती है पावर प्रोड्यूसर. आईपीपी होता है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर. तो वो जेनकोस कहलाते हैं, वो फ्यूल प्रोवाइडर से फ्यूल लेते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. वो फिर एनटीडीसी के थ्रू डिस्कोस को ट्रांसमिट करते हैं. डिस्कोस होती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, और वो आगे जाके फिर कंज्यूमर को दस्तियाब करती है. पाकिस्तान में जो मॉडल है ना वो थोड़ा एंटीक्वेटेड सा है, कि हमारे यहाँ है सिंगल बायर मॉडल. सिंगल बायर मॉडल का मतलब गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी, ठीक है, सीपीपीए के नाम से जानी जाती है. वो जो है सारे जेनकोस से पैसा लेगी, ठीक है, और एनटीडीसी को और जेनकोस को पैसा देगी बिजली लेके, और कलेक्ट करती है वो फिर डिस्कोस से जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है. तो ये थोड़ा सा मैप जो है समझने का, पूरी वैल्यू चेन जो है थोड़ी बहुत समझनी पड़ती है. इसमें और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती है जो हम आगे अगर बात करेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट एक्रोनिम समझने के लिए आई थिंक इतना काफी है. लेकिन अगर और कुछ सवाल हो तो पूछे.
नहीं, परफेक्ट. सो पीपल हैव एन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैप, ताकि आगे जाते हुए उनको और ज्यादा समझ में आ सके. सो यू डिस्कस के यार स्टेट है क्या इलेक्ट्रिसिटी की एंड व्हाट द यूजुअल टर्मिनोलॉजीज आर. लेकिन 2017 में तो तक तो हमारे पास यू सेड देयर वाज अ डेफिसिट, और 2020 में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2026 में तो वी विल बी पीकिंग सप्लाई, एक्सेस सप्लाई, बट 2020 में भी हम आज एक्सेस सप्लाई पे खड़े हुए. तो हाउ डिड दिस जर्नी हैपन, लाइक व्हाट हैज हैपेंड के ये ट्रांजिशन ऐसा आया.
सो आई विल नॉट गेट पॉलिटिकल ओवर हियर, बट अगर मैं और आप प्लानिंग कर रहे होते, आप प्लानिंग ऐसे करते हैं बिजली की, कि हमने पीक डिमांड की बात कर चुकी है, लेकिन हम बोले कि हर साल जो है डिमांड ऊपर जाएगी जीडीपी के हिसाब से, जितनी जीडीपी ग्रोथ होगी उतनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ऊपर जाएगी. एंड दैट इज अ वेरी फेयर अजम्पशन. मतलब दुनिया भर में अगर आप पाकिस्तान की भी हिस्टोरिकल देखें, आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड गोज इन लाइन विद जीडीपी, रियल जीडीपी ग्रोथ. ठीक है, जितने हाउस होल्ड्स डेवलप होंगे उनको और बिजली चाहिए होगी, जितने बिजनेसेस और प्रोड्यूस करेंगे उनको उतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी. तो बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होती है दोनों की. तो अब आप 2015 में जब अग्रीमेंट साइन कर रहे थे पिछली आईपीपीज के साथ, यू टुक इनटू अकाउंट कि आपकी जीडीपी ग्रो हो रही होगी 5-6% 7% पे, जो कि आपकी विजन था एक जमाने में. एंड में हमने जो पिछली 9 एपिसोड में बातें करी है, वो 8 एपिसोड में बातें करी, वो यही किए कि हमारी जीडीपी ग्रोथ हैज बीन स्टैग्नेंट. ठीक है, but I think less than 4%, 3% के करीब आपकी ग्रोथ हुई, आपने 6-7% के हिसाब से प्लानिंग की थी. सो पीक डिमांड अगर आप इंक्रीज देखेंगे, आप देखेंगे कोई 3% से इंक्रीज हुई है सिंस दे स्टार्टेड प्लानिंग. लेकिन जनरेशन कैपेसिटी जो है ना वो 12% से ऊपर से इंक्रीज हुई है. तो उन्होंने फ्रंट लोड कर दी जनरेशन कैपेबिलिटी, बिकॉज दे हैड टू एट दैट पॉइंट इन टाइम. बहुत बेहतर प्लानिंग कर सकते थे, लेकिन जब उनकी जीडीपी ग्रोथ की कैलकुलेशन इतनी ऑफ थी, और उस वक्त बहुत प्रेशर था कि भाई अभी जितनी बिजली ला सकते हैं लेकर आए ऑन द लाइन, तो उसकी वजह से आपकी इतनी एक्सेस प्लानिंग हो गई. ठीक है, अब वो एक्सेस प्लानिंग इस किस्म की है कि आई थिंक टिल 2030, अब जाके जो है दोनों जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की इंक्रीज जो है 5.5% पे होगी, लेकिन उससे पहले डेल्टा जो था, डिफरेंस जो था, वो 12% और 3-4% का है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. तो बहुत बड़ा फर्क था पिछले पास्ट में, ये फर्क कम होता रहेगा जैसे आप आगे जाके थोड़ी पावर प्रोड्यूसर्स रिटायर भी करेंगे आप, क्योंकि पुराने हो गए, आप थोड़ी रीनेगोशिएशंस करेंगे जो हम आगे बात करेंगे. लेकिन इसलिए प्राइमरीली आपका जो था ना ये एक्सेस सप्लाई फॉर्म होना शुरू हुआ. बट एक तो है प्लानिंग का मसला कि हमने प्लानिंग सही नहीं की, एक है पाकिस्तान जस्ट डजंट कंज्यूम इनफ इलेक्ट्रिसिटी. तो एवरेज पर कैपिटा अगर आप कंजम्पशन देखें इलेक्ट्रिसिटी की, पाकिस्तान में कोई 516 किलोवाट आर है, और इंडिया में यही चीज इज मोर देन डबल, आई थिंक 1100-1200 के करीब है, 1208 किलोवाट आवर्स टू बी एग्जैक्ट. सो इंडिया विच इज राइट नेक्स्ट टू अस, हमारे बिहेवियर बहुत सिमिलर है इंडिया से, उनकी हमसे ज्यादा डबल पर कैपिटा कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी की, हम इतना कंज्यूम करते ही नहीं है. अगर आप जो मैं ग्रोथ की बात कर रहा था, टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की डिमांड की अगर आप वो देखें तो कोई 6.5% ग्रोथ चल रही थी, लेकिन कमर्शियल इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स होते हैं उनकी जो ब्रेकडाउन करते हैं वो दिखाते हैं डेटा, उसकी ग्रोथ सिर्फ 3.5% थी, राइट. तो पूरी अगर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इंक्रीज 6-6.5% से हो रही है, इनकी लेस देन हाफ से हो रही है. अब इसका इसकी वजह क्या है कि आपने जब अनरिलायबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी है, और रैंकिंग हमारी बहुत ही बुरी होती थी इन टर्म्स ऑफ रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, बिजनेस लॉसेस वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट करता था कोई $18 बिलियन पर ईयर आप लूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अनरिलायबल इलेक्ट्रिसिटी. तो उस वक्त जो इंडस्ट्री ने किया ना, विच वॉज द स्मार्ट थिंग टू डू, उन्होंने अपनी कैप्टिव पावर बनानी शुरू कर दी, ठीक है. उन्होंने गैस लेनी शुरू कर दी, उससे प्राइमरीली अपना अपने आप को बिजली प्रोवाइड करना शुरू कर दी, जस्ट टू हैव रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी. तो 4-5 हजार मेगावाट जो है इस तरह हमारे निकल गए फ्रॉम द ग्रिड. इसको बोलते पहले ग्रिड पे होते थे, वो ऑफ ग्रिड चले गए अपने कैप्टिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. तो ये इतना बड़ा चंक जो आपका डिमांड का, जिस जो मैंने आपको बोला डेफिसिट जो 6,000 का होता था, उसमें से अगर 4-5 हजार इंडिपेंडेंट बन गए अपने कैप्टिव पावर प्लांट्स के थ्रू, अब वो डिमांड वापस नहीं आ रही ग्रिड पे, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट हो गए, दे डोंट टू बी फेयर केयर अबाउट द ग्रिड. तो अभी जो नेगोसिएशन हो रही है और बात हो रही है कि आप उनको वापस ग्रिड पे लेकर आए, और इंडस्ट्री जो सपोर्ट इश है वो इसलिए नथिंग बट नेशनल इंटरेस्ट, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि उनकी वजह से, नॉट रियली बट उनकी वजह से डिमांड इतनी कम हो गई है कि आपकी बिजली की कॉस्ट बढ़ गई है. एंड मे बी लेट्स टॉक अबाउट दैट लेटर.
सो द पाकिस्तान स्टोरी इज बीइंग सोल्ड टू देम. But so understood. I think India is one example. Vietnam was another comparison. 2018 mein, I think World Bank ki report ye aayi thi, $14-18 billion ka jo loss hai, economic loss. We stood at 115 out of 137, I think, countries. Our ranking was 115 in terms of being unreliable for power. So yeah, long way to go. But really understood. So. ऑफ ग्रिड गए लोग, डिमांड का ऑब्वियसली डेफिसिट आया, एंड प्लानिंग की वजह से भी देयर वाज डिफरेंसेस. सो ये तो आ गई एज एक्सेस सप्लाई के बारे में बात. अब आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू डिस्कस कि जो कॉमन आदमी है, जो एवरेज पाकिस्तानी है, उसका सबसे बड़ा मसला होता है, उसके घर में हमेशा एटलीस्ट दो लोग होते हैं जो उसको हम हर 2 घंटे में याद दिलाते हैं कि यार इतने मिनट बाद जो है ना, इतने घंटे बाद जो है ना, या तो एसी का टाइमर लगा लो या बंद कर दो. दिस इज वेरी न्यू टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. लाइक दिस डजंट, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी कंट्रीज दिस हैपेंस, बट क्योंकि वो प्राइस का हमेशा रहा, एंड दिस इज नॉट ऑलवेज बीन द केस. किसी जमाने में तो धड़ाधड़ विंडो एसीज लग रहे होते थे, दैट्स अ डिस्कशन फॉर अ डिफरेंट डे. बट सो प्राइस हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम. द ग्रोइंग बढ़ती जो बिजली की कीमतें हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम फॉर पीपल, स्पेशली द काइंड ऑफ एंग्जाइटी दैट दे हैव टू फेस, कि हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते बाद कोई ना कोई न्यूज आ रही होती कि ना नेपरा टैरिफ बढ़ा रहा है, व्हाटएवर. So, ये इशू है क्या, एंड व्हाट कैन वी मेक ऑफ दिस, लाइक व्हाट्स हैपनिंग? जब एक्सेस सप्लाई है, सो देन व्हाट इज दिस एंटायर इशू अबाउट दिस कांस्टेंट इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस?
इसमें फिर लेट्स प्रोवाइड अ बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिफोर हम कैलकुलेशन में पढ़ें कि बिजली की प्राइस कैलकुलेट कैसे होती है. कि आपने हमने इन्फ्लेशन की बात कर चुकी है, हमने ये भी बात करी है कि यूटिलिटीज पर आउटसाइड स्पेंड होता है एटसेट्रा. तो अर्बन में अगर आप वही जो हमने बास्केट कंजम्पशन बास्केट की बात कर चुकी है उसमें देखें तो कोई 4.5% अर्बन बास्केट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस की है. ठीक है, तो आपकी महाना कंजम्पशन की 4.5% तकरीबन बिजली के बिल में जाती है. रूरल में थोड़ी कम है जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव एज मच एक्सेस एज वेल टू इलेक्ट्रिसिटी. उनकी कोई 3.5% के करीब उनकी बास्केट का मेकअप इलेक्ट्रिसिटी का. सो फर्स्ट थिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी इन योर कंजम्पशन बास्केट. दूसरी चीज के बड़ी कितने से है पिछले साल से, अगर मई के आप नंबर देखें कोई 22% इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज बढ़ चुका है. राइट, आई डिसएग्री विद के हर दूसरे दिन आते रहते हैं नेप्रा के टैरिफ इंक्रीजेस, बिकॉज ये मसला है हमारे पाकिस्तान में कि टैरिफ इंक्रीजेस डोंट हैपन फास्ट इनफ. ठीक है, अब इनकी भी अब थोड़ी देर में बात करते हैं. ऑल्सो थिंक अबाउट के पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है, जैसे मैंने बोला सिंगल बायर हमारा मॉडल है, तो वो जब इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस ट्रांसफर करते हैं ना, वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ही ट्रांसफर करते हैं. तो हर इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट जो है, और ऑन एवरेज, मतलब ऑब्वियसली थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन होती है, कुछ हाई एंड कंज्यूमर्स को ज्यादा चार्ज करते हैं, लो एंड को बहुत ही कम करते हैं, लेकिन एवरेज अगर आप सब्सिडी देखें ना 2021 अभी जो निकली थी लेटेस्ट, जो आप बात करें कि टैरिफ पड़ा था, तो उसमें भी अगर आपकी कॉस्ट कोई इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 16 रुपए पर किलोवाट आवर आई है, ऐसी कुछ है, उसमें से 1 point something रुपीज वॉज एक्चुअली सब्सिडाइज. अब मुझे एग्जैक्ट नंबर अगर मैं देख लूं 1.85 किलोवाट आवर इज सब्सिडाइज ईच टाइम. तो जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो, ऑन एवरेज रिमेंबर के इलेक्ट्रिसिटी अभी भी जो महंगी है वो सब्सिडाइज होके आपके पास आ रही है. ठीक है, और ये सब्सिडी समवन हैज टू पे इवेंचुअली, ये भी गवर्नमेंट के खजाने में जाती है. जस्ट टू गिव यू सम बेंचमार्क्स, और अब हम डॉलर टर्म से बात करते हैं ताकि हम कंपेयर कर सके बाकी कंट्रीज से. 2018 की एंग्रो की स्टडी थी जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस कंपेयर करी, एंड यू विल सी कि हमारी इंडस्ट्रियल प्राइस विच यू हेयर अबाउट अ लॉट कोई 11.8 cents पर किलोवाट आवर थी, जबकि रीजनल एवरेज और कंपेरेबल एवरेज अगर आप देखें कोई 9.3 cents पर किलोवाट आवर थी. सही है, 9.3 वर्सेस 11.8 बहुत बड़ा फर्क होता है व्हेन यू कम टू एक्सपोर्टिंग. ठीक है, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इतना बड़ा मार्जिन है आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में, विच इज यूजुअली अ ह्यूज इनपुट कॉस्ट, और किसी कंपेरेटर की उसमें अगर आप कंपेरेटिव इलेक्ट्रिसिटी रेट्स देंगे तो आप एक्सपोर्ट भी आसानी से नहीं कर सकते. सो टाइड बैक टू अदर कन्वर्सेशंस वी हैड, इसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने काम किया. आई थिंक ड्यूरिंग कोविड 7.5 cents पे दे रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, अब जाके मेरे ख्याल से 9 cents पे लेकर आ रहे हैं वो, थोड़ी और बढ़ा रहे हैं, बट इसमें बेसिकली मसला था. व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग राइट नाउ बिकॉज हम इन्फ्लेशन की बात करें इज रेजिडेंशियल का क्या मसला है. तो रेजिडेंशियल की अगर आप देखेंगे ना 28% हायर देन एवरेज है पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी प्राइस. तो हमारी कोई 12 सेंट्स पर किलोवाट आवर आई थी और एवरेजली कोई 9.4 सेंट्स पर किलोवाट आवर. तो ये बहुत ही मैसिव डिफरेंस है. सो नॉट ओनली इज योर प्राइस इंक्रीजिंग, इट इज ऑलरेडी हायर बाय अराउंड 30% फ्रॉम रीजनल और अदर कंपेरेबल कंट्रीज. तो ये बहुत बड़ा आई थिंक मसला आपका जनरली रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बहुत ज्यादा है. अगर अभी बात करना हम शुरू करें कि इस इलेक्ट्रिसिटी प्राइस की इतनी हाई क्यों है, तो वी हैव टू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ फैक्टर्स और ब्रेकअप थोड़ा बहुत सोचना चाहिए. सही है, पहली बात तो समझने की ये है कि 60-80% ऑफ योर कॉस्ट इज डॉलर डिनोमिनेटेड. तो आपने पहली चीज तो करी 2018 के, मैं अभी आपको डेटा दिखा रहा था, हमने आई थिंक थोड़ी सी बात कर चुकी है पहले कि डिवैल्यूएशन नहीं थी हमारी. सो डिवैल्यूएशन का मतलब अगर डॉलर 110 या 100 से 160 तक चला गया, That's whatever 50% अगर devalue हो गई currency, तो ये cost जो है technically should have gone up by 50%, मतलब less than 50%, क्योंकि 60% dollar denominated है, but significantly up क्योंकि सिर्फ dollar आपका बढ़ गया. ठीक है, तो ये पहली बात है. अब ये high इतना क्यों है आपका dollar denominated, because आप import बहुत से fuels करते हैं. जो आप fuels use करते हैं, हमारी indigenization इसको कहते हैं, कि आप local fuels कितने use करते हैं. I think we are around 30-40% ऐसी कुछ हमारी indigenization है. 60% actually, and you have to take it to 90%. I think those are the right numbers in terms of कि हम लोकल फ्यूल्स कितना यूज करते हैं. सो बाकी जो सारे हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं फ्यूल्स. ठीक है, एनर्जी कॉस्ट मेक्स अप रफली 35% ऑफ योर टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट. 35% ये हो जाती है. तो आप पहले तो सोच लें कि टोटल जो आप इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है उसमें 35% कंपोनेंट आपका एनर्जी का आएगा, और वो डॉलर डिनोमिनेटर तो बहुत ज्यादा डायरेक्टली है. दूसरी बात है आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स का भी बहुत, अगर अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि 40% ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी इज कैपेसिटी पेमेंट्स. अब ये कैपेसिटी पेमेंट्स होती क्या है, हमने एक्सेस सप्लाई की पहले बात करी है. ठीक है, कि हम ज्यादा बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं एज अपोज टू व्हाट वी नीड. जब आप ये अग्रीमेंट साइन कर रहे थे ना, आपने बेसिकली जो साइन करी है अग्रीमेंट्स वो आपने किए हैं टेक और पे. ठीक है, जिसका मतलब आप भले आप वो बिजली मुझसे लेते हैं कि नहीं लेते, मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे. राइट, देयर इज अ फिक्स्ड कैपेसिटी चार्ज कि मैंने एज अ पावर प्रोड्यूसर रिस्क लिया है आपके साथ ए काम करने में. भले आपने मुझे सॉवरेन गारंटी दी हुई है उसके साथ, विच मींस कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल बैक द पेमेंट्स चाहे जो भी हो जाए. ठीक है, तो टेक्निकली आपका रेट थोड़ा कम होना चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, क्योंकि थोड़ा रिस्क फ्री इश सा हो जाता है. लेकिन गिवन पाकिस्तान यू नो अभी भी आप देख रहे हैं अभी रिनेगोशिएट कर रहे हैं अग्रीमेंट्स एक्सेट्रा, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क ऐड करके जो उस वक्त रिटर्न्स की अग्रीमेंट हुई थी उसके हिसाब से आपको कैपेसिटी चार्ज तो पे करना ही करना है रिगार्डलेस ऑफ इफ यू टेक इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. हेस्को इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. अगर आप बिजली का बिल ब्रेक डाउन करना शुरू करें, हेस्को की बहुत आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी, और उनका कैपेसिटी चार्ज आप देखेंगे बहुत ज्यादा है. ठीक है, बिकॉज कैपेसिटी चार्ज और एनर्जी चार्ज और ये सारी जो मैं चीजें बोल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होंगी, वो कैलकुलेट होंगी टोटल कॉस्ट लेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. ठीक है, जब यूनिट्स ही कम होंगे बिकॉज ऑफ डिमांड इन हेस्को's केस बिकॉज ऑफ डिमांड इश्यूज विद डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप वो यूनिट्स जब कम होंगे वो ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर की वजह से वैल्यू बढ़ते रहेगी. पर यूनिट अगर मैं आपको कॉस्ट बताऊं तो वो कॉस्ट विल सीम हायर बिकॉज आपकी यूनिट्स कम है. तो ये बेसिकली दो चीजें बड़ी आपको सोचने की है कि एनर्जी प्राइस इज ऑब्वियसली मोस्टली इंटरनेशनली लिंक्ड और कैपेसिटी चार्ज इज समथिंग दैट यू कमिटेड टू, और आप उससे निकलना थोड़ा मुश्किल है. अभी हो रही है थोड़ी negotiations, but let's see how we end up with those.
Understood. You mentioned capacity payments and the fact that लोग काफी लोग सुनते हैं न्यूज पे पढ़ते हैं वो बहुत सारी चीजें, so they become fascinated कि ऐसा हो what this is about. Another thing people have heard a lot about recently, especially, is that government jo hai ek cheez pe kaam kar rahi hai to clear up something called circular debt. Ki bhai itni payment ho gayi, itne billion ki payment ho gayi hai, ye bahut bada Pakistan ka masla hai aur ye kafi saalon se reh chuka hai. Aur ye government zyada izafa kar rahi hai usme, is government ne bahut kuch. So all of those things are central down to one of the biggest problems in the power sector, which is circular debt. Having said that, having given a little bit of context and what people might have heard, what actually is circular debt and how can we understand circular debt?
Main isse pehle aur context dunga pehle, right? Just to break down circular debt, and I think puri conversation jo hai hamari end mein evolve hogi into circular debt. Iske maine HESCO ki baat kari, distribution ka masla hai, right? So baki jo do thode bahut components hai na of energy electricity cost, agar main wapas jaun, the next biggest chunk 13-14% is T&D, transmission and distribution cost. ठीक है, अब उसमें transmission and distribution में क्या होता है कि हमें पता ही है कि HESCO, for example, will not be able to provide all of the electricity. उनके losses होंगे, line उनकी infrastructure ऐसा है, इन दूर दराज इलाकों में जा रहे हैं, line losses होते हैं, etc. तो उसमें losses होंगे. तो ये तो Quetta, for example, अगर आप देख लें Quesco जो है उसका covered area जो है ना कोई 300,000 square kilometers se zyada hai, okay, which is like 40% of Pakistan is covered by I think that would be the right math by Quetta's energy supply company. Okay, ab wo Balochistan pura cover kar rahe hain, unki line losses etc bahut hi mushkil hai unko 100% for example electricity provide karna. To isme jo hai NEPRA jo hai hamara regulator wo allowance deta hai, okay, on average allowance hamara koi 16% के करीब है, बट ऑलमोस्ट ऑलवेज इस अलाउंस को एक्सीड करती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है, ठीक है। तो सर्कुलर डेट का पहला कंपोनेंट जो आता है ना, वो एक्चुअली आता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की इनएफिशिएंसी से। एक इनएफिशिएंसी आ गई ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो एक्सीड करते हैं उससे, दूसरी आती है रिकवरीज पे, ठीक है। अब जो नेपरा ये जो टैरिफ कैलकुलेशंस करती है वो सब करती है, और ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की मैं बात कर रहा था, वो जो कॉम्प्लिकेटेड मैथ करके आपको व्हेन दे स्पिट आउट अ नंबर, वो अस्यूम करते हैं रिकवरी 100% होगी। अगर मैंने सेनन को बिजली दी है 40,000 रुपए की महीने में, वो मुझे 40,000 रुपए ही वापस देगा, ठीक है। तो ये पहला अजम्पशन होता है नेपरा का। दिस इज नेवर ट्रू एज वेल, ठीक है। वो पाकिस्तान के आप डायनामिक्स देख लें, कुंडे का हमें पता है कि क्या सिस्टम चल रहा होता है। सम पीपल आर जस्ट नॉट गोइंग टू पे। आप क्वेटा फॉर एग्जाम्पल, अगर बलूचिस्तान का एग्जाम्पल देख लें, उनके हैं बहुत सारे एग्रीकल्चरल यूजर्स और बहुत दूर दराज इलाकों में, ठीक है। उसकी आप रिकवरी करने में कॉस्ट इतनी पड़ जाएगी कि आप बोलते हो यार चलो बाहर में जाओ, ठीक है। डिफॉल्टर्स की जो लिस्ट है उसमें अगर आप देखें तो आई थिंक 40-50% कम फ्रॉम क्वेटा टोटल डिफॉल्टर्स जो आपके आते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स। और मुश्किल है उधर मतलब ट्रैक करना, तो इट्स अ बिट अंडरस्टैंडेबल हाउ ऑल ऑफ दैट हैपेंड। ऑब्वियसली इन चीजों को इम्प्रूव करना है हमें। इनकी तो क्वेटा की रिकवरी जो ओवरऑल आ जाती है वो कोई 80% के करीब आती है, सो 20% लेस देन व्हाट नेपरा इज एक्सपेक्टिंग। तो इन दो इनएफिशिएंसीज की वजह से आपका सर्कुलर डेट बिल्डअप होना शुरू होता है, ठीक है। लेट मी टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट, लेकिन मैं फिर सबको कनेक्ट करके आपको बताता हूँ। आपने मुझे बोला कि नेपरा टैरिफ बहुत हर दूसरे दिन एडजस्ट कर रहा होता है, बट नेपरा एक्चुअली डजंट एडजस्ट फास्ट इनफ। आप सोचें एनर्जी प्राइसेस कितनी जल्दी चेंज होती है, आपकी पेट्रोल प्राइसेस आर रिवाइज्ड नाउ एवरी 2 वीक्स, ठीक है। आपकी बिजली की प्राइस हर 2 हफ्ते में एडजस्ट नहीं हो रही होती, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए पॉलिटिकली बहुत इम्पॉसिबल होता है बिजली की बिल बिजली का रेट हर 2 हफ्ते में चेंज करना, राइट। तो वो डायनामिक प्राइसिंग एज सच नहीं होती और महीनों या सालों डिले होता है। एक्चुअली 2019 के बाद आई थिंक 2021 में टैरिफ एडजस्टमेंट होती है, आई कुड बी स्लाइटली रॉन्ग, बट इतनी कोई लैग होता है आपके एडजस्टमेंट में। ये जो एडजस्टमेंट है ना, इसके भी पैसे देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, या फिर समवन हैज टू बेयर दिस कॉस्ट। तो ये एक और कंपोनेंट बन जाता है सर्कुलर डेट का, ठीक है। उसके ऊपर आपने अगर आप सोचना शुरू करें कि वन सेकेंड, सो इफ यू थिंक अबाउट ये पूरा डेट बिल्डअप हो रहा है, उसमें लिक्विडिटी अनलॉक करने के लिए, सो आपको पैसे किसी गवर्नमेंट को पैसे तो देने ना, मतलब पीएसओ कैसे चलेगी अगर उसको एंड में पैसे नहीं मिलते। जो मैंने जेनकोस की आप बात करें वो कैसे चलेंगी अगर उनको पैसे नहीं मिलते, तो उनको भी थोड़ी लिक्विडिटी पैसे प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट लोन्स लेती है। अब गवर्नमेंट लोन्स लेती है थ्रू दिस थिंग कॉल्ड अ पावर होल्डिंग कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट की अपनी बुक्स पे नहीं आती, तो उससे उन्होंने लोन्स लेने शुरू करे। उसकी आपको फिर फाइनेंस कॉस्ट देनी पड़ती है, इंटरेस्ट कॉस्ट देना पड़ता है, लेट पेमेंट फीस देनी पड़ती है। सो ये बहुत सारी चीजें हैं विच आर एडिंग अप। मैंने आपको बोला था गवर्नमेंट जो है सब्सिडाइज करती है हमारी बिजली, ठीक है, बट गवर्नमेंट के जब का सारा इतना चल रहा होता है वो सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं कर पाती सीपीपीए को। तो ओवरऑल अगर आप ये स्ट्रक्चर देखना शुरू करें ना, तो आपको समझ में आएगा डिस्कोस से मसला शुरू होता है, ठीक है। तभी मैं डिस्कोस की इतनी डिटेल में बात कर रहा था। आई थिंक अराउंड 60% टिल लास्ट टाइम द नंबर्स वर रिलीज्ड इन 2018-19, उस वक्त 60% ऑफ सर्कुलर डेट वॉज बिकॉज ऑफ डिस्कोस, ठीक है। उनकी जो इनएफिशिएंसीज है उन्हीं की वजह से 60% आपका सर्कुलर डेट चल रहा था। अभी हम नंबर्स की थोड़ी सी बात करते हैं, बट इन परसेंटेज टर्म्स आप ये सोचें। दूसरा बड़ा कंपोनेंट जो था वो था ये डिलेड टैरिफ एडजस्टमेंट्स का, कि आपने डिले करके टैरिफ बढ़ना चाहिए बढ़ नहीं रहे, आप उसकी कॉस्ट पास ऑन नहीं कर रहे, वो कॉस्ट बेयर करने के लिए जो पेमेंट करनी है उसकी वजह से एक बहुत बड़ा कंपोनेंट हो गया। नेक्स्ट आई वुड से इज द सब्सिडीज जो आपको पे करनी होती है वो नहीं पे कर रहे, और उसके बाद नॉन पेमेंट चार्जेस और फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट वगैरह उसके ऊपर आ जाती है। इंटरेस्टिंगली अगर आप एंड में 2020 में अगर आप देखें तो 2.1-2.2 trillion आपकी सर्कुलर डेट हो गया था, which is not recognized in public debt, by the way. हमने government debt की बात कर चुकी, ये 2.2 trillion is not counted in, तो ये 5-6% of GDP है, it's not counted in government debt. तो इसका 50% जो है is by held by CPPA, which is the central buyer, हमने जिसकी बात करी थी, जो basically DISCO से पैसे लेके GenCos और NTDC इन सबको provide कर रहा होता है, ये central buying agency जो है, इसमें 50% debt अभी park हुआ है, तो अगर payments आपको देनी शुरू करनी पड़ेंगी, आपको CPPA के से या government से लेके सबसे पहले तो आपको IPPs और ये GenCos जो है इनको पैसे रिलीज करने पड़ेंगे, ताकि ये जो है फिर आगे जाके पार्को PSO इन सबको पैसे रिलीज करना शुरू करें. बट ऑल ऑफ इट स्टार्ट्स एट द स्टार्ट एट द एंड ऑफ द वैल्यू चेन फ्रॉम द DISCOs. ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए. बाकी 50% ऑफ सर्कुलर डेट, एंड फॉर मी इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, इज कि वो पावर होल्डिंग कंपनी जो बनाई थी उसमें 50% डेट पार्क हुआ है आपका. सो इन सिंपल टर्म्स, जो आपका डेट अक्यूमुलेट हो रहा है उसको पे ऑफ करने के लिए या उसके एडिशनल लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए आपने जो डेट लिया है, दैट नाउ मेक्स अप 50% ऑफ द ओवरऑल डेट. बहुत इंटरेस्टिंग नंबर हैं ये वैसे, इफ पीपल स्टार्ट लुकिंग एट इट, बट जनरली दिस इज द फ्लो ऑफ सर्कुलर डेट.
ये काफी टाइम से काफी मसला रहा है. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट दे आर प्रायोरिटाइजिंग, कि ये क्लीन अप हो सके, वरना दिस इज लाइक क्लॉगिंग द एंटायर वैल्यू चेन. जब किसी के पास लिक्विडिटी नहीं है, सभी फंसे हुए हैं. सो दैट्स अ वेरी गुड वे टू सॉर्ट ऑफ कंक्लूड. आई थिंक सर्कुलर डेट हैज बीन वन ऑफ द की थिंग्स दैट पीपल लुक टूवर्ड्स न्यूज सोर्सेज, टूवर्ड्स यू नो लेट्स से सर्च इंजिन्स, to look up कि यार एक तो सर्कुलर डेट है क्या और पाकिस्तान के करंट हालात क्या हैं, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, why is it being prioritized, why is it such a big issue. So great way to conclude, Faiz. We discuss के पाकिस्तान का स्टेट है क्या इलेक्ट्रिसिटी का, what are the dynamics of demand, what supply, there is surprisingly an excess amount of electricity, हम लोग यहाँ तक पहुंचे क्यों हैं, price का क्या है. Surprisingly I found out today from discussing with you, NEPRA is actually not doing these tariff adjustments quickly enough.
But NEPRA chahti bhi to, government doesn't let it do it.
It clashes with populist decisions.
Aapko circular debt basically agar aapko solve karna hoga, end mein jo maine bola masla DISCOs se shuru hota hai, DISCOs ka masla recovery se shuru hota hai, to unko basically tariff badhana hi padega ya fir recovery badhani padegi, apni T&D losses jo transmission losses unko kam karni padengi, but they will have to do raise tariffs. IMF ki bhi jo condition hai, it's to adjust tariffs as soon as possible, aur recognize ye jo maine bola ki recognize kar rahe hai ye PHPL holding company ki jo debt hai, isko aapko public debt recognize karna padega taki aap isko pay off karna shuru kare commercial banks ko.
Interesting. Yeah, let's say maybe not very soon, but it is inevitable. So great, kya hai scene Pakistan ka, bijli ka, प्राइसेस पे क्या फर्क पड़ता है, एक्सेस सप्लाई तक हम कहाँ पहुंचे, सर्कुलर डेट क्या है और ये इश्यू क्यों है और इसको समझना क्यों जरूरी है. ग्रेट वे टू सॉर्ट ऑफ कंक्लूड दिस. आई होप एवरीबडी हैज थ्रू दिस 30-minute एपिसोड हैज अ मच क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ के पाकिस्तान का बिजली का मसला क्या है और आज से 3 साल पहले क्या था. सो दैट ट्रांजिशन दैट पाकिस्तान हैज सीन, वो ऐसा नहीं है कि अगर आपको 2-3 साल पहले बिजली का मसला पता हो, द स्टोरी इज ड्रामेटिकली डिफरेंट. And so this is a good way to for you to get started on it. It is complicated, but hopefully this serves as good fodder for you to think about. Thank you so much, Faiz, for being with us today again. And until next time, which would be episode 10, Allah Hafiz.